हम घर में बंद पड़ी हुई हैं, हम जा नहीं सकते। और जो लोग देख रहे हैं कितनी सौभाग्यवानी, यहाँ पर भी अपने को अत्यंत दुखी और दुर्भाग्य समझ रहे हैं। कितना बजा? 100। अब अंधकार हो जाएगा ना, बस जतपाद पांशु बहुर जन्म कृच्छतो धितात्म भीर जोगी जोगी भी अप्यलभ्य स एव जद्दृक् विषय स्वयं स्थित किम वर्ण्यते दिष्ट महो ब्रजौकशाम। अभी भी वही चल रहा है प्रश्न, ब्रजौकशाम करें हैं। जतपाद पांशु बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योगी अपि अलभ्य, जिनके चरण की धूलियों में से एक धूली पांशु, एक धूली के एक ऐसे योगी जो कि जन्म जन्मांतर तक, कहने कितने जन्म जन्मांतर लग गए, जम नियम जम जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ध्वानुस्मृति और अंत में समाधि में भी, जिनके चरण की रज से एक रज को भी स्पर्श नहीं कर पाते, कौन? ये योगी लोग कठोर कठोर तपस्या करके नहीं पा सके, वही स एव वही किसके लिए कर रहे हैं? ब्रह्मा के लिए, ब्रह्मा जी के लिए भी ये कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कितने युग युगांतर से, कितनी उनकी लंबी आयु, कृष्ण को उन्होंने समझ भी लिया, देखा भी, किंतु कृष्ण निकट आकर के अपने चरण की धूली दिया या वो ग्रहण कर सके? बच्चों ने तो पहले ही चित्कार करना आरंभ कर दिया, चौमा चौमा, और उनको खिझाने लगे, ये कहाँ से आ गया? और कृष्ण ने उनके तरफ देखा नहीं, लीला कमल घुमाते हुए एक सखा के स्कंद पर अपना बायां हाथ रखते हुए और दाहिने से बंसी बजाते हुए मुस्कुराते हुए बच्चों के तरफ देख रहे हैं, और ये हजार ये वंदना स्तव स्तुति कर रहे हैं, चरण की धूली न मिली साक्षात रूप में। तो और लोग योगियों की तो बात ही क्या, वही भगवान ब्रजेंद्र नंदन स्वयं जिनके चक्षुओं के सामने खड़े हैं और उनके साथ में खेल रहे हैं, खेलने की तो बात क्या, कहते हैं थक गए, गईयों को बुलाते बुलाते या चलते चलते, छोटा एक सखा है, सखा माने कृष्ण से उम्र में छोटा, अभी वो लड़का पहली बार आया है ना, उसकी मैया ने कह दिया ने? कन्हैया जरा इस बच्चे को, मेरे बच्चे को देखना, और कृष्ण के साथ साथ में वो लग गया, वो घर में रह ही नहीं पा रहा है, वो जाएगा जो जरूर गोचर, और कृष्ण उसको ले जा रहे हैं। तो पूछा जी थक गया और बस उसको प्यार से बैठा करके और बैठा लिया गोदी में और उसका पैर दबाने लगे। देखो कैसे सुबल भी ऐसा छोटा सा बच्चा है, मासूम बच्चा जैसा, जितने बच्चे हैं उनमें सबसे सुबल ही छोटा सा है कृष्ण का, और परम सुंदर परम रसिक सब गुणों से संपन्न, और कृष्ण की कैसी कैसी सेवाओं को वो करता है, कहते हो गोचर हो करके उनके पैर भी दबा देते हो, श्रृंगार अपने हाथ से कृष्ण करते हैं, वो सब बच्चे करते हैं और ये भी करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं और उठा पटक भी हो जाती है, कृष्ण उनसे हार करके और जब युद्ध में विजित माने उनको पराजित कर देते हैं तो कृष्ण उसमें मुस्कुराने लगते हैं लज्जित होकर के और बड़े आनंदित होते हैं, ऐसे सब खेल करते हैं, ये सब एक साथ में खाते हैं, कितना परस्पर परिहास इत्यादि करते हैं इन सखाओं के साथ, ये सब ब्रजवासियों के सौभाग्य की बातें मैं क्या कहूँ। अब इसके टीका हम लोग पीछे देखें आज।
This cassette, including 21st December and 22nd December. 22nd December is start from here.
अखिल और सामी सिंधु कैसे हैं? बतलाइए, बतलाइए तो. ऐसे समझो, वैसे.
कैसे तो संक्षेप मल्ला नाम शनि लड़ा इसका बेचारे बिताए.
देखो संक्षेप में परतत्व को श्रीमद् भागवत में वदन्ति तत्व विदस्तत्वम् जजज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते ये कहा गया. ये परतत्व अद्वय ज्ञान वस्तु है, ज्ञान स्वरूप है. इसी को त्रिविध भक्त लोग अधिकारी लोग ब्रह्मवादी ज्ञान नेत्र से या ज्ञान नामक उपासना से ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं. योगी लोग परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं और भक्त लोग भगवान के रूप में उनको दर्शन करते हैं. इसमें से जो ब्रह्म स्वरूप है इसमें सच्चित आनंद में से केवल चित्त का आंशिक विकृत प्रतिफलन मात्र ब्रह्म में है. सच्चिदानंद भगवान स्वरूप है, इसमें आंशिक चित्त और शुद्ध चित्त नहीं, उसका विकृत प्रतिफलन ये ब्रह्म स्वरूप है. परमात्मा भगवान के आनंद माइनस सच्चित और उसका खंड प्रकाश है. लागनी तो इसमें है नहीं, इसमें आंशिक रूप में चित और आंशिक रूप में सत और उसका आंशिक प्रकाश ये परमात्मा है जो जीवों के साक्षी नियंता और फल देने वाले हैं. ये लोग जो के द्वारा उनको दर्शन और भक्त लोग भक्ति के तारतम्य से इनको बहुत रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में किंतु बहुत रूपों में देखते हैं। भक्ति का तारतम्य रस के ऊपर में प्रतिष्ठित है। रस कहते हैं आनंद को, सुख उसी का जगत में विकृत प्रतिफलन सुख है, जिसको जड़ानंद विषयानंद इत्यादि कहते हैं, उसी को इस जगत में रस शब्द कहा गया। पानी और दूसरे वस्तुओं को मिलाकर के अत्यंत स्थूल रस है। इस रस से भी बृहत भगवतामृत में सनातन गोस्वामी जी ने आनंद का तात्पर्य दिखलाया है। विषयानंद, विषयानंद से भी श्रेष्ठ स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय आनंद से ब्रह्मा का आनंद, महर्षियों का आनंद और अधिक, उनसे भी अधिक ब्रह्मा जी का जो आनंद है वो, उनसे भी मुक्त जीवों का आनंद, मुक्त जीवों में भी सनक सनंदन इत्यादि के आनंद की अपेक्षा भक्तों का आनंद करोड़ों की, भक्तों में भी वैकुंठ के भक्तों का जो आनंद है उससे अधिक अयोध्यापुरी के भक्तों में, उससे अधिक द्वारकापुरी के, उससे अधिक मथुरापुरी के, उसके अतिरिक्त अधिक ब्रज में, ब्रज में भी बहुत तरह के विचार हैं। तो ब्रह्म में आनंद नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, इसलिए उसके जो आश्रय, उसके जो उपासक हैं वो रस की अनुभूति नहीं कर पाते। परमात्मा में आनंद नहीं, केवल सत और चित्त का आंशिक प्रकाश होने के नाते वहां पर भी रस नहीं। जहां पर भगवान का कोई स्थिर विशुद्ध सत्व स्वरूप नाम रूप गुण लीला और परिकर होता है, वहां पर आनंद की अनुभूति होती है और वही रस शब्द से पर्यायवाची शब्द के रूप में वो दिखता है। तो वहां पर कृष्ण में और श्री ईश में कोई अंतर नहीं। यहां पर श्रीश का तात्पर्य समझ लो परमात्मा से लेकर और जितने भी भगवत तद्रूप अवतार इत्यादि हैं, स्वांश अवतार हैं, तद्रूप वैभव हैं, उस सब को ले लो, सभी एक ही हैं। इसलिए कृष्ण का रूप देख करके नारायण मोहित नहीं होंगे, लक्ष्मी भी मोहित हो सकती है। नारायण तो कृष्ण ही है, दूसरे तत्व है ही नहीं। जब कृष्ण के कुछ कुछ गुण, 50 गुण जहां आंशिक रूप में लक्षित होते हैं, बिंदु बिंदु रूप में, वो जीव तत्व है। जब उनके 55 गुण कुछ बुंद बुंद रूप में दिखते हैं तो वो शंकर और ब्रह्मा इत्यादि रूप हैं। ये भी भगवान के ही तद्रूप वैभव तो नहीं, किंतु ये भगवान के वैभव हैं, ब्रह्मा और शंकर भी। वो जब अपनी शक्ति इनमें प्रकाशित करते हैं तब वो नाना प्रकार की शक्ति वाले बनते हैं, इसलिए उनको गुणावतार कहते हैं। भगवान का कोई गुण इनमें आ करके और 55 गुणों का संचार करके बिंदु बिंदु रूप से और अधिक रूप में जगत का मंगलमय कार्य को कराता है, और इसके विरुद्ध विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनको ये लोग दमन करने वाले भी हैं। शंकर जी भी असुरों का संहार करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं और सृष्टि के उपयोगी कार्यों को करते हैं। ब्रह्मा और शंकर नहीं करते, इनके अंदर से कौन कर रहा है? वही कृष्ण ही कर रहे हैं, इसलिए इनको गुणावतार कहा गया। और तद्रूप वैभव में निसिंह से लेकर निसिंह, वामन, परशुराम, मीन अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, राम अवतार इत्यादि सभी जितने 24 प्रकार के लीला अवतार इत्यादि हैं और अधिक भी हो सकते हैं। इन सब में भगवान के 60 गुण पूर्ण रूप में प्रकाशित रहते हैं, इसलिए ये हतारी गत दायक तक सब जितने गुण भगवान के हैं वो सब इनमें हैं और इनको भगवान भी कहा जाता है ना? इनका नाम है, रूप है, गुण है, क्रिया भी है और ये सभी भक्ति देने वाले हैं। हतारी गतिदायक माने मार करके गति देने वाले हैं, और किंतु कृष्ण में कुछ विशेष ये है, रामचंद्र जी किसी को मार करके उसको मुक्ति दे सकते हैं, भक्ति नहीं देंगे। कृष्ण में ये विशेषता है कि उसको भक्ति भी दे देते हैं। हतारी गतिदायक जितने विष्णु तत्व हैं वो सभी हैं, तो इसलिए उनमें सब में आनंद है, सच्चिदानंद घन है वो सभी, जितने तद्रूप वैभव हैं, इसलिए वो लोग आनंद उनमें होने से ये सभी रसो वैसह में आते हैं, तद्रूप वैभव वाले। इसीलिए नृसिंह जी में भी, वामन देव में भी, परशुराम में भी, रामचंद्र में तो विशेष रूप से ही, बलदेव प्रभु में ये सब रस हैं ना? किंतु ये रस कैसे हैं वो बतलाया ना, व्यतीत भावना वर्तम जत चमत्कार भार भू हृदय सत्वोज्जले बाढ़ सदते सरसम। कहते हैं जब तक दिमागी कसरत है, मानसिक चिंताएं हैं, मन के द्वारा जो भाव उत्थित होते हैं, तब तक आनंद या रस नहीं है। आनंद कब होगा, जब हृदय में शुद्ध सत्व जो कि नित्य सिद्ध परिकरों में रागात्मिक जनों में जो हैं उनके अनुगत्य में भजन किया जाए, रागानुगा हो और रागानुगा के अनुगत वैष्णव के अनुगत जब भजन किया जाए तो शुद्ध सत्व उनके हृदय में प्रकाशित होता है। जब शुद्ध सत्व प्रकाशित होगा तो भगवत तत्व के संबंध में उनको पूर्ण धारणा होगी, तब उनसे परस्पर जो भाव में विनिमय होगा वो रस है। इसके पहले कुछ रस नाम की चीज नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद का पर्यायवाची शब्द ही आनंदमयो अभ्यास, अर्थात रसमयो अभ्यास, रसो वैसह। आनंद माने जिसमें विशुद्ध विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व का आश्रय हो और विशुद्ध सत्व की घनी मूर्ति हो विषय के रूप में, और आश्रय में विशुद्ध सत्व स्वरूप आश्रय हो भक्त लोग, तब दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होता है इसको कहते हैं रस। अकेले विषय से भी रस नहीं होगा, अकेले आश्रय से भी रस नहीं होगा, केवल पानी से ही रस नहीं बनेगा और केवल चीनी से भी नहीं बनेगा, दोनों का मिलना होना चाहिए। इसलिए जब आश्रय के भाव विषय के भाव से मिलकर विषय को अत्यंत उल्लसित करते हैं और प्रसाद के रूप में भक्तों को भी अत्यंत आनंद में उल्लसित करते हैं, तब यह रस कहा जाएगा, ऐसे रस नहीं कहा जाएगा। कृष्ण रसिक हैं और रस भी हैं, दोनों हैं। रामचंद्र जी में या नारायण में या नृसिंह देव में जब रस का विचार करते हैं, आनंद का विचार करते हैं, तो नृसिंह देव में कौन सा रस है ये विचार करें हम, कौन सा रस है, कौन सा रस होगा नृसिंह देश में, वीर और भयानक या विभत्स है। देखो रस का विचार आश्रय के द्वारा होता है, उनका भगवान का नहीं, इसलिए इनमें दास भाव है। प्रहलाद महाराज जी का इनके प्रति क्या भाव था, दास भाव। किंतु दास ने देखा क्या, हिरण्यकश्यप को विदीर्ण कर रहे हैं, नाड़ी घोड़ी निकाल करके बड़ा विपत् स्वरूप देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने इस विभत्स कांड को देखा, उनके अंदर में ये भावना, पिताजी को क्षमा कर देना, आपका घोर अपराधी था, हमारा हमारे प्रति बहुत से अत्याचार थे, इसलिए दासरस तो है ही, इसमें स्थाई दास्य भाव है, और इस पर उनका गौण रूप में उनमें देखा विभत्स भाव। इसी तरह से रामचंद्र जी में हम देखेंगे या नारायण में देखें तो उनमें शांत, क्योंकि प्रहलाद नृसिंह देव जी का अवतार स्थाई रूप में कुछ दिनों के लिए नहीं हुआ, एक क्षण में हुआ और एक क्षण में अंतर ध्यान हो गया, इसलिए इस पर रस का आनंद का विचार हम लोग नहीं कर सकते। अभी क्षण मात्र के लिए प्रहलाद महाराज जी को बचाने के लिए भक्त वत्सल है, भक्त की रक्षा के लिए आए, इसलिए आनंद की अनुभूति अधिक नहीं है, स्थाई रूप में नहीं है, इसलिए स्थाई रूप में नारायण है नित्य काल, इसलिए इनका विचार होगा। तो इनमें क्या विचार होगा, इनमें शांत दास्य और वात्सल्य, एकदम सख का आधा, सख आधा आधा तो ऐश्वर्य मूलक माधुर्य मूलक नहीं, ये आधा भाव शांत पूर्ण रूप में ऐश्वर्य ही है, इनमें निष्ठा रहती है, हमारे उपास्य नारायण है, वो बृहत है, जगत की सृष्टि इच्छा से ही सृष्टि स्थिति प्रलय कर लेते हैं, इसलिए इनमें परिपूर्ण रूप से शांत भी है, दास्य भी है, ऐश्वर्य मूलक दास्य, पूर्ण दास्य नहीं है, ऐश्वर्य मूलक जय विजय प्रभृति है, और विश्वक्षीण है, और भी इनके परिकर हैं दासरस। नारद जी भी यहाँ दासरस के ही सेवक हैं, ये लोग उनको षड़ ऐश्वर्य परिपूर्ण देखते हैं, ऐश्वर्य स वीर्य जसस श्रिय ज्ञान वैराग्य जस श्री, षड़विध ऐश्वर्य है, ये भगवत्ता यहाँ से आरंभ हुई, ब्रह्म में परम भगवत्ता नहीं प्रकाशित है, और परमात्मा में भी भगवत्ता प्रकाशित सड़गुण ये जो है वो प्रकाशित नहीं है, इसलिए वहां पर आनंद भी नहीं, किंतु भगवत्ता जहां नारायण से आरंभ हुई, जहां पर कि ये सब चीजें हैं यहां से आरंभ हो गई, इसलिए शांत हुआ, दास्य हुआ, और सख का आधा माने नारद प्रभृति कभी इनसे हंसी दिलगी भी करते हैं, कैसे हंसी दिलगी करते हैं, इनको बालक बना दिया नारद, कैसे बालक बनाया, इनकी स्त्रियों से जाकर के कह दिया जैसे बड़ी पतिव्रता बनती हो, लक्ष्मी जी से कहा आप तो अनुसुईया जी के पतिव्रता के पाशंग में भी नहीं है, पाशंग में ही नहीं है, मैंने पाशंग किसको कहते हैं, पाशंग जानो, पाशंग नहीं जा, इधर है तराजू को बराबर करने के लिए पल्लों को थोड़ा सा कुछ उसमें दे दिया, पत्ता दे दिया, घास दे दिया, कोई पत्थर दे दिया, एक कंकड़ दे दिया, ये पाशंग कहते हैं, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, उसको पूरा करने के लिए जो दे दिया गया उसको पाशंग, तो पाशंग में भी नहीं है, क्या कहा, पाशंग में भी नहीं है, अच्छा। उन्होंने पार्वती जी से और किनसे, सरस्वती जी से परामर्श किया, उसको नीचा दिखाना है, उसको गिराना है, हम लोगों से तीनों से बड़ी हो जाएंगी, नारद जी कह कहते तो चले गए, और उन तीनों ने अपने तीनों पतियों से ब्रह्मा विष्णु शंकर से कहा, तो उन्होंने जब कहने पर उन्होंने कहा जी इनको पतित करना है, आप इनकी परीक्षा लेकर के इनको, आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी तो बड़ी अघटन शक्ति है, मुझे डर लगता है इन लोगों से, ये उच्च कोटि के साधक और भक्त हैं, इसलिए मैं डरता हूँ उन्हें, जैसे नहीं आप जब तक नहीं करेंगे उनकी परीक्षा और उनको पतित नहीं करेंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक, कहिए अब विपत्ति में डाल दिया, तो वो गए और कहिए आप लोग सभी जानते हैं जो किस प्रकार से उनको अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने कहा जैसे हमें कुछ को भिक्षा दीजिए, उन्होंने कहा जैसे भिक्षा कुछ लाई, उन्होंने कहा जी ऐसे भिक्षा नहीं, नंगी होकर के भिक्षा दीजिए। नंगी होकर के अपने पति पास में तपस्या कर रहे थे, उनके पास में गई, कहीं हाँ हाँ तुम दे दो, कोई चिंता की बात नहीं है, जाओ नंगी होकर के दे आओ। वो समझ गए ये तीनों आए हैं त्रिदेव, बस ये गई। उन्होंने कोशा चीज तो भी अपनी पतिव्रत की तो रक्षा करनी है, पर साथ ही साथ में उन्होंने उनसे कहा पुत्रो भव, बस छोटे से बच्चे शिशु पुत्रो भव। अभी जैसे शब्द बच्चे होते हैं ए के करते हैं, बस तीनों वहां पर बच्चे हो करके और रमने लगे, बस नंगी हो करके दूध रूपी भिक्षा उनको दे दिया, स्तन पिला दिया उनको, और कहे जब तक मैं नहीं कहूं तब तक ऐसे हमारे पलंग पर नंगे ही आप बैठे रहिए और स्तन हमारा पान कीजिए, दूध पीजिए, हमारे अतिथि होइए, अतिथि भव। बस बहुत दिन हो गए लक्ष्मी जी और ये तीनों खोजते 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 नारद जी फिर मिल गए, तो उन्होंने बतला दी ये कहाँ आपके पति हैं। फिर ये आई तो उन्होंने पूछा जी आप लोग कौन हैं। अंशिया ने पूछा, उन्होंने कहा जी हम आपकी पुत्र वधु। पुत्र वधु? अरे हमारे तो पुत्र ये तीन हैं, अभी तो भाई बच्चे हैं, इनके वधु कहाँ से हो गई, आप तो हम ही उन्हीं की पत्नियां हैं। तब उन्होंने बड़ी सेवा की और रोई गाई, तब फिर उनको लौटा। इसलिए नारद जी कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, जब नारायण मिले ना ये तीनों इनसे, तब हंसी मजाक होने लगी, तुम्हारे लिए आज हमको ये ऐसा होना। इसलिए सख का भाव है, किंतु सब समय ये प्रभु षड़ैश्वर्य पुणे ये भावना रहती है, इसलिए इनमें अढ़ाई रस मान। रामचंद्र जी में कमो बेशी यही अढ़ाई रस ही हैं, किंतु थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, नहीं वो आधा आधा पूरा होता नहीं, आधा और प्लस आधा पूरा नहीं होता, वहाँ वो आधा आधा ही रहता है, क्योंकि नित्य जगत है ना, वो पूरा कैसे होगा, वो आधा का आधा ही रहेगा। इसलिए दो पूरे पूरे और दो आधे आधे, दो पूरे शांत दास्य सख और वात्सल्य का आधा ऐश्वर्य वाला था। सख इनके सखा हैं कौन? सुग्रीव, भोगचंडाल, सुग्रीव इत्यादि, भीषण, भरत, लक्ष्मण इत्यादि, ये सखा हैं। किंतु सखा का भाव कोई इनमें पूर्ण रूप से नहीं था। सखा उसको कहते हैं जब दोनों बराबरी के हो और तनिक भी न्यून अथवा अधिक बड़ा न हो, बराबरी का भाव सब समय रहे, और उसमें परस्पर ऐसा भाव हो कि उसका जूठा वो भी ले सकता है, उसका जूठा वो भी लेगा, दोनों लड़ पड़ेंगे भी, हंसी दिलगी इत्यादि करते हुए एक के पलंग पर दूसरे रहेंगे, उनमें कोई भी भेद नहीं रहे, यहाँ तक कि उनकी मैया भी एक ही जैसा व्यवहार करें, उनके पिता भी एक ही जैसा व्यवहार करें। रामचंद्र जी मैं वात्सल्य है, बचपन में खेलते थे, मैया उनको पकड़ने जाती है ना, और रामचंद्र किलकारी मार करके सखाओं के साथ में भाग रहे हैं, किंतु भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी चार की चतुर्भुज धारी चार भुजा देखा, और त्रिट कुंडल सब देखे, और देख करके तब स्तुति जोरी, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, क्या अरे आप तो वही ब्रह्मा भगवान हैं, हमने तपस्या की थी मुझे अब याद आई, हम और हमारे पति, और तब आपने वर दिया था ये हमारे समान ही पुत्र आपको होगा, वो आप ही वही आए हैं, आप तो चतुर्भुज नारायण हैं, और स्तुति करने लगी। प्रभु जी ने तब देखा भाव जैसे ये तो इनका वात्सल्य भाव खत्म हो जाएगा, तो थोड़े से मंद मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने पर ही माया ने इनको ये कर दिया, और साथ ही साथ में उनको भाव को तो इसमें वात्सल्य है, किंतु जदा कदा कभी 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 क्या सब समय इनको ऐश्वर्य भाव रहता है कि ये भगवान है, हमारा पुत्र भगवान है, इसलिए ये पूरा वात्सल्य नहीं। और सखाओं का जो बतलाया, सुग्रीव जी से रामचंद्र जी की मितादी हुई, अग्नि की साक्षी में हम दोनों आशय दोस्त बने, हमारे ऊपर में विपत्ति पड़ी है, तुम्हारे ऊपर में भी विपत्ति पड़ी है, हमारी स्त्री को कोई हर ले गया, तुम्हारी स्त्री को भी कोई हर ले गया, अब दोनों मिलकर के उस शत्रु के चंगुल से मिलकर के हमारी स्त्री तुम ला दो और तुम्हारी स्त्री। अब रामचंद्र जी ने बाली का वध कर सुग्रीव की पत्नी को ला दिया, और इन्होंने सुग्रीव ने हनुमान इत्यादि बंदरों को भेज करके सीता जी का पता लगा करके युद्ध करके और सीता जी को लौटाए। यहां तक तो मित्रता हुई, किंतु दोनों एक आसन पर बैठे हाथ जोड़ करके सुग्रीव जी सब समय विनती करते हैं, चरणों में निवेदन करते हैं। कभी भी मित्र तो कभी कह दिया भूल से, किंतु सब समय प्रभु बने रहे, स्वामी बने रहे और इनके ये सेवक बने रहे। लक्ष्मण जी को देखो, भाई हैं, भाई सखा जैसा होता है, किंतु बड़ा भाई पिता भी होता है, इनका पिता का ही भाव दिखता, भाई का भाव नहीं है। ये जब रामचंद्र जी सीता जी के साथ में वन में रहते थे तो इनका काम क्या होता था, रात भर तीर धनुष लेकर और दिरासन में बैठकर बस ऐसे सचेत होकर के चारों तरफ में पहरा देते थे, सब प्रकार से कुटिया बनाते थे, भोजन लाते थे, सब प्रकार से इन दोनों की सेवा करते थे। और सीता जी के प्रति कभी आंख उठा करके पैर के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा, इसलिए ये सब सेवक के लक्षण है। विभीषण जी का भी ऐसे ही सेवक का भाव है, मित्रता का भाव कभी नहीं आया, इसलिए इसमें थोड़ा सा केवल आंशिक थोड़ा सा मित्रता का भाव है, आनंद का भाव है, रस का भाव है। इसलिए रामचंद्र जी में शांत दास्य सख का आधा वासल्य और मधुर नाम की कोई चीज नहीं। यद्यपि आजकल आधुनिक राम भक्तों में देखा जाता है कि वो वृंदावन जैसे कृष्ण का भजन करते हैं, वो भी इसी रूप में लेते हैं, मधुर रस से उनका भजन करते हैं, मधुर रस से किंतु भजन करेंगे तो रास कहाँ से करा ले? यह रास जनकपुरी में होगा न, अयोध्या में होगी न, दंडकारण्य में न, चित्रकूट में, कहाँ होगा? हाँ, जनकपुर में कुछ हो सकता था, क्योंकि वहां की जितनी राजकुमारियां थी रामचंद्र जी के रूप से मुग्ध हुई थी, किंतु वहां पर राष्ट्र तो हुआ नहीं। और एक पत्नी व्रतधारी हैं और सीता जी भी वैसे ही, सीता जी कोई शौथ नहीं रख सकती, यहाँ तक कि सोने की मूर्ति भी अपने सामने नहीं रखेंगी ना रामचंद्र रखेंगे, इसलिए ये भी दास्य रस ही है। अब सबके मूल अंशी कृष्ण हैं, क्यों? एते चांद सकला पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक जो वर्णन किया ये सब भगवान हैं, कौन? नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और बलदेव प्रभु, कल्कि और जितने बारह इत्यादि हैं, ये सभी भगवान हैं। विशेष करके राम और नारायण तो भगवान परिपूर्ण रूप से हैं, किंतु कृष्ण क्या है? एते च अंश कला, ये जितनों को भी वर्णन किया, जो असंभव को भी संभव कर दिया नृसिंह जी ने, रात में नहीं, दिन में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, किसी जीव के द्वारा नहीं, उसकी मृत्यु रही, ऐसे कोई एक क्षण नहीं लगा, उसे समाप्त कर दिया। और रामचंद्र जो इतने दयालु, जगत में मर्यादा की स्थापना करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, और नारायण ऐसे अश्वर्यशाली, इन सबके अंशी मूल अवतारी बतलाया गया कृष्ण को, क्यों? भागवत में और बहुत जगहों में उन लोगों का वर्णन करते हुए उनको भगवान कहा गया, किंतु स्वयं भगवान नहीं कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया, उनमें और उन लोगों में अंतर तो है नहीं। एक पूर्णिमा का चांद, वही कभी द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी और चतुर्दशी का चांद कहलाता है। चांद में कोई अंतर नहीं, केवल दृष्टिकोण देखने के एंगल ऑफ विजन का केवल दिखाना है उसी का। इसे कहीं से वो एक चंद्र का एक कला देखती है, कभी दो कभी सोलहवीं कला तक दिखती है। अब एक को मूल कहेंगे, एक एक जो कला है उससे यही पूर्ण होता है ना, पूर्ण से ये कलाएं हैं, पूर्ण में ये सब कलाएं हैं। एक में सोलह नहीं है, सोलह में एक है। इसी तरह से कृष्ण में कृष्ण ही बारह देव, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही बलदेव है, कृष्ण ही कल्कि है, बामन में सब है, किंतु रामचंद्र कृष्ण नहीं है। ये यदि कह दिया जाए तो कुछ लोगों को चोट पहुंचे, इसलिए ऐसा कहा नहीं जाता, एक ही है कहा जाता है ने? अब इसका विचार कैसे लिया जाए, इसीलिए कहा कृष्ण श्रीश तत्वतः एक है, किंतु रसेन उत्कृष्यते कृष्ण रूपमेशा रसस्थिति। कृष्ण रस के वजह से श्रेष्ठ है, शक्ति के तारतम्य से श्रेष्ठ है, तो एक ही श्रेष्ठ कैसे। उनके जितने प्रकाश हैं कृष्ण के, उन प्रकाशों में सबसे अधिक रस और शक्ति इसमें प्रकाशित है, इसलिए सच्चिदानंद जो है सच्चित आनंद परिपूर्ण रूप में इनमें प्रकाशित है कृष्ण। ऐसा सत चित और आनंद कहीं भी प्रकाशित नहीं हुआ, इसलिए इन सब का विचार करके कृष्ण को अंशी कहा गया। जैसे कृष्ण है, कृष्ण में 64 गुण बतलाए गए, और वो भी पूर्ण नहीं, पूर्णतर नहीं, पूर्णतम। कृष्ण में सब भक्त अवतारों में दास्य है, किंतु कृष्ण का दासत्व तो कैसा होगा, कुछ रसमय होगा ना। कृष्ण में शांत है, उनमें भी शांत है, किंतु वो कैसा है शांत, रसमय है। जैसे पुलिन गाय नदियां वेणु विषाण ये सब शांत रस में गिने तो जाते हैं, किंतु कोई भी शांत रस के नहीं है। जहां पर राधा और कृष्ण और गोपियां रस की वर्षा करते हुए रसमय हो करके रस स्वरूप हो रहे, नित्य कर रहे हो, रास माने क्या है, रस से रास, रास ही रस ही रास हुआ है, यही श्रीमद् भागवत ने विशेष रूप से दिखलाया ना? रास यदि नहीं होता तो कृष्ण रस स्वरूप हैं ये कहा नहीं जाता, नहीं कहा जाता। इससे परिपूर्ण जितने भी रस हैं, द्वादश रस, इसमें परिपूर्णतम मात्रा में यहां पर प्रकाशित हुए, किसी न किसी रूप में, अन्य रूप में या व्यक्ति रूप ये सभी उसी में प्रकाशित है। इसलिए रास को सर्वोत्तम कृष्ण की लीलाएं एवं रसमय है कृष्ण, ये इसी के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने निगम कल्पतरोर्गलितं मुखम सुख मुखाद द्रव संयुतम पियत भागवतम रसमम रसमालम रसमालम। मैंने इसी श्रीमद् भागवत में जो रस का आलय है दशम स्कंध, उसमें भी रास है, इसका आस्वादन है। कृष्ण कैसे रस स्वरूप है, इस जन्म लीला से लेकर और द्वारका तक समस्त लीलाओं में एक एक रस का परिपूर्ण वर्णन करते हुए ये सब दिखलाया गया कैसे। अब इस सब चीज को देखने के लिए अब हम लोग दूसरे दिन कुछ विचार करेंगे, आज यहीं तक रहे, समय हो गया है। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण हरि गोविंद।
जय नित्यलाभ विष्णु अष्टोत्तर दोष कुमार गुणकार केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलाभ विष्णु जय 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 जय
विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज
जय जय हरि हरि बोल
कृष्ण शरत चंद्रमसम कौमुदी कुमुदाकरम जगौ गोपी गणास्तेकम कृष्ण